الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. آج کی حدیث پیج نمبر 182 کے اوپر روضۃ الطالبین کتاب میں 103 حدیث نمبر ہے کہ آدمی کی فضیلت دوسرے پر تقویٰ کے ساتھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال له انکا، کہ انہوں نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انکا لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى تفضله بتقوى، کہ تم نہ سرخ رنگ والے سے بہتر ہو اور نہ سیاہ رنگ والے سے، مگر یہ کہ تم ان سے تقوی میں بڑھ جاؤ. لغات میں انکا بے شک تم، لستا لیسا ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے لیسا، ٹھیک ہے. تو لیسا کو آپ گردان میں چلائیں تو لستا آتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم، ٹھیک ہے. اس طرح اس کی گردان چلتی ہے. تو لستا جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نہیں تم، تم نہیں، ٹھیک ہے. انکا لستا، بے شک تم نہیں. بخیرن، خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتری، ٹھیک ہے، زیادہ بھلائی، خیر کا یہ مطلب ہوتا ہے بہتری یا زیادہ بھلائی. تو کوئی بھی خیر کا کام ہو، بہتری کا کام ہو، تو اس کے لیے لفظ خیر بولا جاتا ہے. من حرف جر ہے، احمرا کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کا رنگ سرخ ہو. احمر جمع اس کی حامر آتی ہے، مؤنث اس کا حمراء آتی ہے، حمراء ایکچولی، ٹھیک ہے، حمراء. تو ولا واؤ کا ترجمہ اور، لا کا لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، کہ اور نہ اسودا، اسودا یہ بھی ایک رنگ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کالا ہونا، جیسے حجر اسود کالا پتھر. مؤنث اس کی سودا آتی ہے، اور اس کے بعد پھر الا تو تثنی یعنی ایکسیپشن کے لیے ہے، استثناء کے لیے. ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تفضلہو، تفضلہو کیا لکھا ہوا ہے کہ فضلہ یا فضلہ، باب سمیہ سے بھی آتا ہے اور باب نصرہ سے بھی آتا ہے. تو فضلہ یفضلو بھی ہوتا ہے اور فضلہ یفضلو بھی ہوتا ہے. فضلن اس کا مصدر ہوتا ہے جس کا مطلب باقی رہنا، یعنی باقی رہنا یا بہتر ہو جانا، آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں نا فضیلت حاصل ہونا، تو فضیلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، بہتر ہو جانا کسی کے مقابلے میں. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر، ٹھیک ہے. یعنی کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کے اوپر فضیلت دی اس طرح سے کہ وہ اولو العزم پیغمبر کہلائے، جیسے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہوا. بتقوی، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرنا. اردو میں اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں، یعنی نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے. تو تقوی جو ہے وہ بچنے کا نام ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے یعنی بندے کے اور پروردگار کے تعلق کو نقصان پہنچاتی ہیں. قال تعالى فأما من أعطى واتقى، بس جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا. ٹھیک ہے، لغات کے بارے میں کسی کو کوئی سوال؟ اس کی تشریح پر آتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ انسانی فضیلت ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتی، بلکہ انسانی فضیلت کا دار و مدار دینی اخلاق و کردار اور تقوی پر ہوتا ہے. یعنی فضیلت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے فضیلت، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے، اخلاق اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خلق سے مزین کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے کہلاتے ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار، اولیاء اللہ، یہ سارے نام استعمال کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو ان کے سامنے بھی فضیلت جو ہے وہ رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی شخص کی فضیلت ان کی نگاہوں میں تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلق سے مزین کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خلق کیا ہے کہ انسان کے ظاہر کے اوپر نہ جائیں بلکہ اصل میں باطن کے اوپر جائیں، باطن کے مطابق فیصلہ کریں. اس حدیث میں بعض علماء نے سوال کیا کہ انسان تو اور بھی بہت سے رنگ کے ہوتے ہیں، مگر اس حدیث میں صرف دو رنگوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس سوال کے متعدد جواب شراح حدیث نے دیے، یعنی جو حدیث کی تشریح کرنے والے علماء گزرے ہیں، شارح کی جمع شراح، انہوں نے متعدد جواب دیے ہیں. مثلا یہ کہ اکثر لوگ انہی دو رنگوں کے ہوتے ہیں، تو اکثر کو کل کی جگہ پر رکھ دیا، للاکثر حکم الکل، یعنی اکثر کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی علاقے کے رہنے والے اگر اکثر لوگ گورے ہوں، ٹھیک ہے، تو کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ گوروں کا وطن ہے، حالانکہ اس وطن کے اندر کچھ کالے بھی رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ براؤن لوگ بھی رہتے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ گوروں کی ہے، تو اکثر کے اوپر کل کا حکم لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ملک پورا گوروں کا ملک ہے. ٹھیک، کہتے ہیں نا ہم لوگ یورپ کو کا ملک ہے، حالانکہ یورپ میں 100% تو گورے نہیں رہتے نا. تو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے جس کو عربی زبان میں ایسے کہا جاتا ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے. تو یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ اکثر لوگ جو ہیں ان دو رنگوں کے ہوتے ہیں، یا تو کالے یا سرخ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں کا تذکرہ کیا. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ احمر سے مراد آزاد اور اسود سے مراد غلام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس زمانے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلونگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، دنیا کے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس زمانے میں جو احمر لوگ تھے نا وہ دنیا پر چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو اسود لوگ تھے یعنی افریقنز، ٹھیک ہے، کالے لوگ، نیگروز جن کو کہتے ہیں، یا تو یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی ماتحت تھے گوروں کے. جن کو ہم گورا کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں گورے تو نہیں ہوتا نا، اصل میں ان کی رنگت بھی جو ہوتی ہے وہ اچھی خاصی سرخ اور یعنی پنک ٹائپ کی شکل ان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سرخی مائل ہوتے ہیں وہ، یورپینز جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ غالب تھے، تو اس وجہ سے وہ آزاد تھے اور یہ کالوں کو غلام بناتے تھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس لیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا زمانہ بھی دنیا پر آیا ہے کہ جبکہ کالے لوگ جو ہیں وہ حاوی تھے اور گورے لوگ جو ہیں وہ ان کے غلام تھے. یہ زمانہ کب ہمیں اپنی تاریخ سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ مصر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ مصر کے اندر جو فرعون سب سے بڑی بادشاہ تھی اس زمانے کی، تو یہ فرعون جو تھے نا، فرعین جو تھے یہ گورے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ کالے لوگ تھے، ٹھیک ہے، کوپٹکس جن کو آج کہا جاتا ہے، ان کی نسل ہے یہ، پوری موجود ہے آج بھی اس کی، فرعون کی نسل کے لوگ. تو اچھا، اس کے علاوہ یہ جو بڑی مشہور ایک کوئین ہے کلیوپیٹرا، تو کلیوپیٹرا جو کوئین ہے یہ کوئی گوری کوئی تھوڑی تھی، یہ تو کالی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نسل تھی بادشاہوں کی یہ کالوں کی بادشاہت تھی، اور ان کے غلام کون تھے؟ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کیا ہیں؟ گورے، ٹھیک ہے، बनी इसराइल कहाँ से चले, बनी इसहाक, यानी इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम को का नाम था ना, तो याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन थे, इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे उनकी नस्ल से पूरा यूरोप है। ठीक है, ये जो रोमन्स जिनको कहते हैं ना, रोमन्स, ये रोमन्स जो हैं जिनके अंदर पूरी यूरोपियन नस्ल आ जाती है, ये कौन है, ये बनी इसहाक है। ठीक है, तो ये यानी गोया के बनी इसहाक जो है वो उन्हीं का एक एक जो खानदान का हिस्सा था, बनी इसराइल था, और बनी इसराइल इन काले बादशाहों की गुलामी में थे। ठीक है, लेकिन ये फिर बाद में चेंज हो गया, फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो है वो उठा दिया और इनको जो है गिरा दिया। ठीक है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दुनिया के अय्याम हैं, हम इनको लोगों के दरमियान घुमाते फिराते रहते हैं, कभी किसी को ऊपर किया, कभी किसी को नीचे किया, कभी किसी दूसरे को ऊपर किया, उसको नीचे किया। फिर इस तरीके से यानी ये इन्होंने फिर एक तशरीस किए है कि अहमर सम्राट सारे आजाद लोग आ गए इसमें, और अस्वद सम्राट जितने भी दुनिया में गुलाम थे वो सारे अस्वद में कवर हो गए। मतलब ये है कि आका को गुलाम पर किसी किस्म की फजीलत नहीं मगर तकवा के साथ, ठीक है, तकवा की बेसिस पर फजीलत है आका के ऊपर गुलाम को, या आका अगर तकवा वाला है और गुलाम जो है वो गुनाहों में पड़ा हुआ है तो आका को फजीलत होगी, गुलाम को नहीं। अच्छा, आका गुलाम का मतलब ये को थोड़ी है कि आका जो है वो जालिम हो और गुलाम मजलूम हो, ये तो जरूरी नहीं है। आका जो है वो बहुत ज्यादा रहम दिल भी हो सकता है, बहुत नेक परहेजगार भी हो सकता है। तो आका और गुलाम होना तो ऐसे ही है जैसे कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी तो नेक हो सकता है ना, और एम्प्लॉय जो है वो बदमाश हो सकता है, उसी तरीके से आका भी नेक हो सकता है, गुलाम भी बदमाश हो सकता है। तो फजीलत किसके किसके पास होगी, फजीलत जो है वो तकवा वाले के पास होगी, चाहे वो इधर हो या उधर हो। अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह ने इसका ये जवाब दिया है, यानी यही जो सवाल था कि भाई दो रंग क्यों जिक्र किए, तो इसका ये जवाब दिया कि अहमर से मुराद अहले अजम हैं और अस्वद से मुराद अहले अरब हैं। ठीक है, यानी अहले अरब जो थे ना, इनका ओरिजिनल जो रंग है ना, ये गोरा नहीं है। ठीक है, ये गोरे चट्टे आपको नजर आते हैं ना ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये ओरिजिनल अरब्स नहीं है। ठीक है, ये तो बाहर से आए हुए अरब्स हैं, खुसूसन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अरब कोई थोड़ी थे ओरिजिनली स्पीकिंग, वो तो इराक से आए थे। ठीक है, तो जो ओरिजिनल अरब्स अल्लाह ताला ने इस खित्ते के अंदर पहुंचाए, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को जिसको के इस खित्ते के अंदर सेटल किया, तो उसकी औलादें जो थी ना वो ब्राउन थी, और ब्राउन रंग जो होता है वो थोड़ा सा यानी काले की तरफ मायल होता है। ठीक है, अस्वद की तरफ मायल होता है वो ब्राउन रंग। ठीक है, तो अरबों का असल रंग जो है ना वो ब्राउन है। तो फिर एक तशरीह ये बनी कि अस्वद से मुराद अहले अरब हैं और अहमर से मुराद अहले अजम हैं, जिनके अंदर के जो दूसरे रोमन्स आ गए। ठीक है, अरब को अजम पर सिर्फ तकवा से फजीलत हासिल होगी। इसहाक अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के अलावा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन जहां तक मैं मुझे थोड़ा याद पड़ता है वो दो बेटे तो थे, दो बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके अलावा एक और, बाकी आपको अगर ज्यादा याद हो तो आप बता सकते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हकीकी फजीलत तकवा और अमल सालेह से है, माल दौलत शक्ल सूरत नस्ल और रंग और जबान वतन से नहीं है, जैसे कि कुरान मजीद में भी आता है इन अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला इकराम वाला वो है जो कि तुम में से ज्यादा तकवा रखने वाला हो। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर ना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐसे डिफाइन कर दिया कि जो कि हर दौर हर जमाने के ऊपर पूरा उतरता है। अब हर दौर के अंदर जाहिर जो जाहिरी दुनियावी फजीलत होती है वो किसी एक कैटेगरी को होती है, दूसरे को नहीं होती है। ठीक है, जब अरब गालिब आ गए पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है, दोनों सुपर पावर्स जो रोमन्स एंड पर्शियंस थे, उन दोनों को अरबों ने नीचे कर दिया, पर्शियंस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए और रोमन्स जो है वो अच्छे खासे सिमट के रह गए यूरोप के अंदर, और अरब जो है वो गालिब आ गए, स्पेन पूरा का पूरा अरबों के पास आ गया, हत्ता के सेंट्रल यूरोप तक अरब पहुंच गए। ठीक है, और अरब यानी ये जो अल्बेनिया और बॉस्निया वगैरह का इलाका है, तो यहाँ तक सल्तनत उस्मानिया, खैर वो तो उस्मानिया के ज़माने में पहुंची थी, लेकिन जो अरबों की सल्तनत थी, उमैयाओं की जो सल्तनत थी, उमैयाड्स की, ठीक है, वो पूरे पूरे स्पेन पर गालिब आ चुकी थी, और उसका इतना यानी इन्फ्लुएंस था कि वो यूरोप तक एडवांस करते थे। ये ग्रीस भी जो है वो उनके कब्जे में तकरीबन आ गया था, और सिसली, ये सब सब इलाके, हत्ता कि इनकी एडवांस जो थी स्पेन के अंदर, जो मुसलमान थे, इनकी एडवांस जो है वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ भी होती थी, लेकिन वो बहरहाल उनको रोक दिया गया था, वो वहां से आगे बढ़ नहीं सके थे। फिर ये जो उस्मानी खुलफा आए थे, तो उन्होंने भी कोशिश करी थी वेस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करने की, लेकिन उनको भी जो है वो फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर शिकस्त हुई थी, और वहां पर उनका ना यानी बस हो गई थी, इससे आगे उन्होंने जाने का फैसला नहीं किया था, बस फ्रांस पे शिकस्त हो गई, अब आगे नहीं जाएंगे। फ्रैंक वो बादशाह था फ्रांस का, जिसने कि उनको शिकस्त दी थी, और आपको पता है किस तारीख पर शिकस्त दी थी ये जो फ्रांस का बादशाह था, पता है किसी को? ये उस्मानियाज को किस तारीख पर शिकस्त दी थी फ्रांस के बादशाह ने, फर्स्ट अप्रैल को दी थी। अच्छा, मैंने तो खैर कुछ और पढ़ा है, आपने कहीं पढ़ा है अगर फर्स्ट अप्रैल फूल, अप्रैल फूल की वजह से आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में उसकी तारीख जो है वो किसी और वाकये के साथ मिलती है, मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था किसी के आर्टिकल के अंदर, वो पता है क्या था, बड़े मजे की बात है, वो था 11वीं शरीफ, समझ गए 11वीं शरीफ क्या होती है, वो 11वीं शरीफ थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो नबी अलैहि सलाम ने ना ऐसा उसूल बयान कर दिया कि ये उसूल जो है वो हर दौर और हर रबीउल सानी, नहीं नहीं जी, रबीउल सानी से उसका ताल्लुक भी था, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की 11वीं शरीफ थी। खैर, तो हर दौर हर जमाने में क्या मतलब कि ये जो आजकल चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूजीलैंड के अंदर वाकया हुआ, तो ये क्या है कि भाई ये एंटी इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने के ये काम किया है, अकेले किया हो या मिलके किया हो, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, उनको क्या कहते हैं, वाइट सुप्रेमिस्ट, ठीक है ना, ये जी गोरों की सुप्रेमेसी के दावेदार हैं। लेकिन ये दावेदारी जो है ना, ये इस वक्त की है, ये कल को अगर काले ऊपर आ जाएंगे, जो कि कयामत के करीब के जो वाकयात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें पता लगता है कि काले जो है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज काला बादशाह जो है ना, अफ्रीका का एक बादशाह होगा, वो जो है वो काबतुल्ला को शहीद करेगा मिसाइल मार करके, पता है ना, तो वो काबतुल्ला को शहीद करेगा, यानी वो उस वक्त इतने पावरफुल होंगे कि वो यहाँ पर यानी उनका असर होगा, यानी बादशाह जो है वो ऐसा लगता है कि कानून के पास होगी उस वक्त, ठीक है। तो ये तो एक यानी ये ब्लैक सुप्रेमेसी भी तो हो सकती है ना, यानी माजी में भी ब्लैक सुप्रेमेसी हुई, फिर उसके बाद जो है वो ब्राउन्स की सुप्रेमेसी हो गई, फिर उसके बाद आजकल फिर गोरों की सुप्रेमेसी हुई हुई है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो कालों की सुप्रेमेसी हो जाएगी। तो ये तो दुनिया के अंदर ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया जो कि हर जमाने हर दौर के ऊपर ये यानी सादिक आएगा कि भाई तकवा जो है ना, यही है असल काम, यानी कामयाबी का मेयार, और रंग और नस्ल नहीं है। तो इस्लाम ने इस विशेष सर्कल को जो है ना, कभी एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आ जाता है, ये विशेष सर्कल जो है ना इस्लाम ने ब्रेक ही कर दिया, कि तुम इस गलतफहमी में जो रहते हो तो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी, और फिर तुमने तो वही जहन्नुम में जाना है अगर तुम बगैर तकवा की जिंदगी गुजार रहे होगे। तो दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी तो सिर्फ तकवा वालों को मिलती है। ठीक है, कोई सवाल अगर हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा, इस क्लास का मकसद ये है कि सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहे। अच्छा, एक एक दो बातें एक्चुअली मेरे जहन में आ रही थी, तो वो मैं याद दहानी की खातिर खाली रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि ये जो हमारा दीन एसेंशियल्स का जो सिलसिला है, तो इसमें हमने मेनली तीन सब्जेक्ट्स रखे हैं ना, एक तो कुरान की तफसीर, दूसरी हदीस मुबारक, तीसरा फिका, चौथा हमने अरबी की कोशिश करी थी, लेकिन वो ना हमसे हो सका ना आपसे जो है वो हमें कुछ ऐसा हुआ कि भाई इस किस्म की क्लास के अंदर अरबी चल सकेगी, तो उसको तो ख़त्म ही कर दिया, तो तीन रह गई हैं खाली। कुरान का अलहमदिल्ला निसाब हमारा मुकम्मल हो गया है, फिका का भी निसाब हमारा अच्छा खासा तकरीबन हो ही चुका है, अब उसके अंदर बहुत सारी बातें अभी रहती भी हैं, लेकिन जो एसेंशियल्स इबादात से मुतालिक थी वो तकरीबन मेनली हमने कर ली हैं। इंशाल्लाह वी विल रिटर्न टू इट आफ्टर डूइंग सम हदीस, ठीक है। तो हदीस अभी हम कर रहे हैं। तो फिका के अंदर तो हमने वो जो बेसिक्स होती हैं जी, पाकी के मसाइल और नमाज के मसाइल वगैरह, रोजे के मसाइल वगैरह, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन ओवरऑल आपने शायद नोटिस किया हो कि इस क्लास के अंदर जो हमारा ज्यादा फोकस होता है ना, वो इन मसाइल को डिस्कस करने के बजाय जो है हमारा ज्यादा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, ठीक है, प्रायोरिटीज को डिस्कस करना है, अपनी सोच की इस्लाह के लेवल के ऊपर हमने ज्यादा हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी मसाइल की अहमियत कम हो गई है या हम मसाइल को अहम समझते नहीं है, ठीक है, ये हरगिज इसका मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सोच की इस्लाह हो जाएगी, अगर हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाए ना, तो फिर हम अपनी जिंदगी के मसरूफ औकात में से कुछ वक्त निकाल करके मसाइल को सीखने का काम करें। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हफ्ते में 2 घंटे ये क्लास होती है। इस प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जो है वो सारे मसाइल बताए जाएंगे, बल्कि उसके लिए करना ये चाहिए कि इन 2 घंटों से अपनी यानी मोटिवेशन लेकर के फिर आप जो है वो अपने जो करीबी उलमा हैं, चाहे वो आपके घर के करीब रहते हों, चाहे आपकी मस्जिद के इमाम साहब हों, या जो भी आपके जानने वाले हों, उनसे आप अपना ऐसा रिश्ता बनाएं कि आप उनसे मसाइल का इल्म हासिल कर सकें, ठीक है ना। पाकी नापाकी के मसाइल, इसके अंदर अच्छी खासी तफसील हो जाती है, जो कि हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं बाय द वे, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं, तो आप उन रिकॉर्डिंग्स से भी यानी रीप्ले करके उनको सुन सकते हैं। पूरी की पूरी एक पेज उसका मेंटेन होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं कि भाई घर में कैसे पाकी मेंटेन करनी है, बिस्तर को कैसे पाक करना है, जानमाज की क्या अहमियत है, जानमाज की पाकी, अगर जानमाज पाक नहीं होगी तो नमाज कैसे होगी, ठीक है, कपड़ों की पाकी, तो पाकी के मसाइल जो हैं ये तो एसेंशियल हैं, उसके बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर नमाज के मसाइल कि क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, ठीक है। तो ये नमाज के मसाइल, ये सारे अहम तरीन मसाइल हैं और इनका इल्म जो है वो आपको इस क्लास में डिस्कस हो चुका। लेकिन अब अगर जो लोग नए आए हैं जिन्होंने वो नहीं सुनी है, या तो वो रिकॉर्डिंग सुन लें या अपने उलमा से जानने वालों से ताल्लुक बना करके जो है ना वो उन मसाइल को ज़रूर से सीखें, ठीक है, क्योंकि मसाइल की अहमियत जो है वो कभी भी कम नहीं होती। बेशक हम सोच और फिक्र और आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट वगैरह के ऊपर बहुत बातें करते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसाइल ख़त्म हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस क्लास के अंदर आपने शायद नोटिस किया हो कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस, बल्कि इस क्लास में भी और जो जनरल हमारे बयानात वगैरह होते हैं, मजालिस होती हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि अपनी ज़िंदगी में पूछ के चलने वाला सिस्टम बनाए, ठीक है। ज़्यादा इल्म वालों के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि हम हर हर मोड़ के ऊपर उनसे मशवरा ले करके ज़िंदगी के फ़ैसले करें, ठीक है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला ने हमें खुली नहीं दे दी कि जो चाहे जो मर्जी आए तुम करो, जो तुम्हारे समझ में आए, जो तुम्हारा दिल चाहे वैसे तुम करो, ठीक है। इस दुनिया की ज़िंदगी को तुम किसी तरीके से स्पेंड कर लो अपनी मर्जी से, और उसके बाद मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा इकराम करूँगा, ठीक है। ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सेट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए इस दुनिया के अंदर। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे हमें गवर्न करते हैं, इसके लिए हमें अच्छे खासे इल्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इल्म जो है वो बैठ करके आप यानी एक तो ये कि खाली तसव्वुरात के ज़रिए से इल्म हासिल नहीं कर सकते, मुराक़बों के ज़रिए से इल्म हासिल नहीं कर सकते, और हत्ता कि हम तो ये बात भी बार बार रिपीट करते हैं कि इवन किताबों के ज़रिए से इल्म हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। किताबों के ज़रिए से मालूमात भी हासिल हो जाती हैं अच्छी खासी, लेकिन अपने ज़ाती मामलात के अंदर कैसे काम करना है, कैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, तो ये आपको किताबों के अंदर भी इस तरीके से नहीं मिलता। और साथ साथ हम शैतान वाले कॉन्सेप्ट को भी बार बार आपके सामने यानी रखते हैं कि शैतान जो है वो मिसगाइड भी करने के लिए मुस्तकिल लगा हुआ है हमारे पीछे। तो इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है पूछ के चलने के ऊपर, ठीक है। तो हमारी इस क्लास की कामयाबी जो है ना, कि ये क्लास सक्सेसफुल हो रही है कि सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इसका हमारे पास एक क्राइटेरिया है, एक, ठीक है ना, ये एक जो है वो इस आजिज ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। वो क्या क्राइटेरिया है कि क्या आप अपनी जिंदगी में पूछ कर चलने वाला निजाम कायम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस पूरी क्लास का एक मकसद क्या है, एक एक मकसद बयान करें या एक जुमले में इस क्लास का मकसद बयान करें, तो वो मेरा यही जुमला होगा, ठीक है ना, कि आपकी जिंदगी में पूछ कर चलने वाला सिस्टम आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। अगर आ गया है तो बेशक आपने कुछ भी नहीं सीखा, ये क्लास की हद तक कम से कम कामयाबी होगी, ठीक है ना, पर्पज अचीव। क्योंकि जब आप पूछ के चलना शुरू कर देंगे, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारे फैक्ट सीख लिए, बहुत सारी जो है वो आपको मालूमात मिल गई, हदीसें मिल गई, कुरान की आपको जो है वो तर्जुमे आ गए और तफसीरें आपने पढ़ ली, लेकिन आपने पूछ के चलने वाला सिस्टम अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपनी जिंदगी में, ठीक है। मैं इसको अपनी अपना फेलियर समझूंगा, ठीक है ना, बाकी आपका तो अल्लाह ताला आपका मामला करेगा, लेकिन मैं अपना फेलियर समझूंगा इसके अंदर, ठीक है, कि मैं नाकाम हो गया इस क्लास के अंदर, ठीक है। बिकॉज दिस इज द वन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कि आप पूछ के चलते हैं कि पूछ के नहीं चलते हैं। तो इस वजह से ना इस आज इसका बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस है कि जी कौन जो है मेरे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, इस क्लास के स्टूडेंट्स में से कौन जो है उसने किसी के साथ, हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हुए कि आप सब के सब जो है वो हमारे स्टूडेंट्स बन जाए, ठीक है, आप सब के सब जो है वो हमसे पूछना शुरू कर दें, ये हमारा गोल हरगिज नहीं, ठीक है ना। हमसे पूछना, हमारे आप जो है वो मुरीद बन जाए, ठीक है, या हमारे जो है वो जो भी बन जाए, सालिक बन जाए, जो, ये हमारा गोल नहीं है, ठीक है। हमारा गोल ये है कि आप किसी के साथ अपना इस्लाही ताल्लुक जोड़, ठीक है ना, किसी ना किसी के साथ, जो कि क्वालिफाइड लोग होते हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ अपना इस्लाही ताल्लुक जोड़ें। अगर आपने अभी तक नहीं जोड़ा है ना, ठीक है, तो फिर कम अज कम इसके लिए कुछ कुछ सोचें इसके बारे में कि क्यों नहीं जोड़ा मैंने अभी तक, क्या चीज बन रही है कि इतने सारी चीजें कुरान से मेरे सामने रखी गई हैं, हदीस से मेरे सामने रखी गई हैं, अकली तौर पर मेरे सामने रखी गई हैं, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर कन्विंस नहीं हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी के मामला पूछ के तय करने चाहिए, क्या वजह है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ये नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट बन जाए, आप हमारे सिलसिले में बैठ हो जाए, आप हमसे जो है वो सारी चीजें पूछना शुरू हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी तक इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझाए, इसके लिए बात करें, पूछ लें इसके लिए, ठीक है, क्या क्या है ये सिस्टम, क्यों है ये सिस्टम, मेरे अभी तक बात नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना। अक्सर होता है कि ये जो वन टू मैनी वाला रिलेशनशिप होता है ना, जैसे क्लास के अंदर 20-25 लोग बैठे हुए हैं और एक टीचर बोले चला जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, बल्कि हमने तो तजुर्बा ये किया है कि बहुत सारी बातें उल्टी समझ में आ रही होती है लोगों को, जब वो आकर के वन टू वन बैठते हैं ना, तब समझ में आता है कि भाई वो जो बात करी जा रही थी वो तो उल्टा ही समझ रहे थे उस बात को, ठीक है। तो इस वजह से ये जो वन टू वन एक इंटरेक्शन होती है ना, इसके बगैर बात आगे बढ़ती नहीं है। तो भाई अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम पूछ ले आकर के, बेशक आप किसी और किसी से भी दुनिया में ताल्लुक बनाए, वो हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, ना तो हमें शौक है कि जी हर बंदा आकर के हमसे ही जो है वो मशवरा करना शुरू हो जाए, ठीक है, हम हैंडल भी नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को, सच्ची बात है, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगे ना, और फिर अपने अपनी फैमिली भी होती है, अपने बच्चे भी होते हैं, अपने दीगर जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। तो ये कोई शौक नहीं लगा हुआ कि ये सारे जो है वो हमारे बन जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, हजरत ने काम लगाया हुआ, इस वजह से काम कर रहे हैं, बल्कि तो हकीकत तो ये है कि कोई यानी ऐसे कोई है भी नहीं कि जो लोग पूछा करें उनसे, लेकिन वो चूंकि बड़ों ने काम लगाया हुआ, इस वजह से जब कोई पूछने के लिए आता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दिस इज द होल थिंग कि भाई हमारी जिंदगी अब पूछने वाली बन रही बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है, ये चीज़ ये एक क्राइटेरिया है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को कंसिडर करेंगे। मामलात और अखलाकियात से क्या लिखा है कि जोड़े हुए मसाइल हैं, जुड़े हुए मसाइल हैं, क्या ये भी अपने उलमा से पूछ कर मालूम करें या इनका तरबियती शोबे से ताल्लुक है और इनको अपने शेख से ही पूछना चाहिए। यानी मामलात और अखलाकियात से जुड़े हुए मसाइल हैं, क्या ये भी अपने उलमा से पूछ कर मालूम करें। उलमा से पूछ करके डेफिनेटली मालूम करना चाहिए। देखें यहाँ पे मामला यही है कि जैसे किसी को किसी ने जवाब भी दिया था कि भाई अगर तो किसी का बाप हो, ठीक है, तो उसको चाहिए कि अपने बाप से पूछे, ठीक है, और अगर किसी का बाप ना हो तो फिर उसको चाहिए कि बाहर जाकर के लोगों से पूछे जो बड़े हैं, ठीक है, सीनियर लोग हैं, ठीक है। तो शेख का की जो हैसियत है ना, वो अपने बाप के जैसी होती है, ठीक है, कि भाई उससे, क्योंकि अब यहाँ पर ये बायोलॉजिकल बाप का मामला तो नहीं होता ना, तो ये तो रूहानी बाप होता है, ठीक है, यानी दीनी मामलात के अंदर बाप। तो भाई अगर आपका बाप है तो आप उससे जाकर के पूछें, यानी आपने किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ है तो आप उससे जाकर के पूछें, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक नहीं बनाया हुआ है तो फिर आप इन जनरल उलमाए कराम से पूछें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जरूरी नहीं है कि जो बाप है वो हर चीज का एक्सपर्ट भी हो, ठीक है ना, बाप हर चीज का तो एक्सपर्ट नहीं होता ना, इवन दुनियावी मामला के अंदर भी वो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि उसका आपके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, आप उसकी प्रायोरिटी होते हैं और वो आपकी प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो इखलास वाला ताल्लुक होता है ना और मोहब्बत वाला ताल्लुक होता है वो इंसान का अपने बाप के साथ ही होता है, ठीक है। तो बाप के पास जब वो जाएगा पूछने के लिए तो बाप उसको, या तो अगर बाप को पता है तो वो बता देगा, और अगर नहीं पता है तो वो एक मुखलिस मशवरा देगा कि भाई मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको फलाने जगह पर भेजता हूँ, आप वहां पे जाकर के इस चीज को सीखें, वहां पे जाकर के इस बात को पूछें, ठीक है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम दूसरे अल्फाज में प्राइमरी केयर फिजिशियन वाले कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्राइमरी केयर फिजिशियन जो होता है वो अमेरिका का जो जो मेडिकल सिस्टम है ना, तो उसमें वो इंश्योरेंस बेस्ड है, ठीक है ना, हर बंदे को इंश्योरेंस जो है वो परचेज करनी पड़ती है, और इंश्योरेंस जो है वो क्या करती है वो, ये अच्छा, ये इंश्योरेंस जो है ये जरा से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है। बहरहाल यानी वो हलाल हराम वाला यहाँ पे मसला नहीं है, इंश्योरेंस हलाल है कि इंश्योरेंस हराम है, बस वो इंश्योरेंस सिस्टम के थ्रू ही आपके सारे सारा मेडिकल कवरेज चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ उसको पैनल वाला सिस्टम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि जी यू हैव टू सेलेक्ट ए प्राइमरी केयर फिजिशियन, पीसीपी, ठीक है। पीसीपी क्या होता है, वो एक जनरल फिजिशियन होता है, हो सकता है उसने किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी की हुई हो, लेकिन होता वो जनरल फिजिशियन है, ठीक है। अब आपका ये काम होता है कि आपको जो भी बीमारी हो ना, आप जाएं उस पीसीपी के पास, ठीक है ना। पीसीपी अगर तो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा तो वो खुद ही आपका इलाज कर देगा, और अगर नहीं होगा उसका एक्सपर्ट तो वो आपको रिफर करेगा किसी दूसरे एक्सपर्ट की तरफ जो कि उस फील्ड को ज्यादा अच्छा जानता है, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि पीसीपी जो है वो उसी लाइन का बंदा है, मेडिकल का बंदा है, ठीक है ना। तो उसको पता है कि जी ये वाली जो नॉलेज है वो कौन से वाले डॉक्टर के पास मिलेगी, ठीक है, कौन से वाले हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इसकी एक्सपर्टीज ज्यादा पाई जाती है। ये आपको नहीं पता बिकॉज आप जो है वो एक कॉमन आदमी है, ठीक है ना, आप पेशेंट साइड के ऊपर है, आपका मेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, पीसीपी का ताल्लुक है, ठीक है। तो शेख की बिल्कुल यही हैसियत होती है, लेकिन अगर किसी का पीसीपी है ही नहीं, अब वो क्या करेगा, अब वो यही करेगा ना कि वो खुद ही जो है वो इंटरनेट के ऊपर रिव्यूज पढ़ेगा, और फिर कभी किसी से पूछेगा, कभी किसी से पूछेगा, फिर कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा होगा, फिर कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा होगा। तो इससे क्या होगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है वो सही डॉक्टर के पास पहुंच भी ना पाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर एक्सेल किया है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अमेरिका का एक मुल्क है फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट द बेस्ट लेकिन है, ठीक है, तो उन लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया है जो कि एग्जैक्टली हमारे दीन के सिस्टम से मैच करता है, ठीक है। ये जो शेख और सालिक वाला सिस्टम है बिल्कुल यही वाला सिस्टम है। तो इस वजह से इन जनरल तो आप मशवरे लोगों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना एक रूहानी बाप बनाया हुआ है ना जिसको कि शेख कहते हैं, तो चाहिए कि पहले इनिशियली जो है उसी से मशवरा कर लें और फिर उसके मशवरे के मुताबिक जो है वो दूसरे लोगों के पास जाए। इस्लाही ताल्लुक के दायरे में क्या क्या आता है, हर चीज पूछना होता है या कोई लिमिट्स होती हैं, अगर लिमिट्स हो तो बताएं। इस्लाही ताल्लुक के दायरे में लिमिट्स जो है वो डॉक्टर के लिए बताया ना कि डॉक्टर के लिए कोई लिमिट्स होती हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, इस्लाह किस चीज की जाती है, बीमारी की जाती है, अगर आप बीमार है ही नहीं, ठीक है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बीमार हैं तो फिर अब उसके अंदर कोई लिमिट है कि जी मुझे फलानी बीमारी तो डॉक्टर से डिस्कस करनी है और फलानी बीमारी डिस्कस नहीं करनी है। अगर आप किसी बीमारी को डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारी क्या खुद ब खुद हवा हो जाएगी, खुद ब खुद जो है वो आपसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक ठीक है। हाँ, ये और बात है कि आप ऐसा करें, खूब जो है ना रोजाना रात को तहज्जुद में उठ करके अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे, ठीक है ना, मेरे लंग में जो है वो कैंसर हो गया है, तो अल्लाह मुझे उस कैंसर से निजात दिला दे, तो अल्लाह ताला आपको निजात दिला देंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अगर कोई बीमारी लगी हुई है रूहानी, ठीक है, जैसे आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो फिर या तो आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लें, या फिर अल्लाह ताला ने दुआ का दरवाजा बंद तो नहीं किया, तो अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, खूब दुआएं मांगे, अल्लाह ताला आपकी बीमारी को दूर फरमा देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन होता है ऐसा, तो कोई कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट प्रॉब्लम विद स्पिरिचुअल डिजीज इज दैट वन इज अनअवेयर ऑफ इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि आप भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब है ना, तो आपको पता है कि जी आपके पास तो लोग आ जाते हैं अपने आप को बीमार समझ करके, ठीक है, तो आपको जो है ना लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि जी आप बीमार हैं तो आप मेरे पास आए, ठीक है, क्योंकि जिस्म के बारे में हम लोग बड़े कॉशियस हैं, बड़े केयरफुल हैं, तो जरा सा भी कुछ मसला हो जाए तो फिर हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन रूहानी बीमारी का मसला ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट से अनअवेयर है कि रूह भी बीमार हो जाती है, और रूह की बीमारियां क्या होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो मशायख होते हैं या उलमाए कराम होते हैं ना, उनकी बातों में आप अक्सर जो है ना वो ये चीज़ देखेंगे कि वो लोगों को यही समझा रहे होते हैं कि भाई बीमारी क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो कैसे भी यानी बंदा बीमार पड़ जाता है, कैसे उसका इलाज करना होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की, और आखिरत के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए रूहानी बीमारियों का इसी दुनिया में इलाज कर लो, तो उनकी बात जो है ना ज्यादातर इन्हीं चीज़ों में चल रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि इस वाली फील्ड के अंदर हम यानी शैतान जो है ना वो हमें कन्विंस करके रखता है कि तुम बीमार बीमार कोई नहीं हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है, यू आर फिट एंड फाइन, बल्कि तुम्हें जो है ना बस अगर ज्यादा फिक्र हो ही रही है जन्नत में जाने की, तो तुम अमाल अमाल की तादाद बढ़ा दो, ठीक है ना, तुम ज्यादा अमाल करना शुरू हो जाओ तो तुम जन्नत में ना पहले ही पहुंच तो रहे हो, तुम यू आर फाइन, यू विल स्टिल गेट इनटू जन्नत, लेकिन अगर हाँ तुम्हें जन्नत में ऊंचे और मजीद दर्जात वगैरह चाहिए ना, तो तुम अमाल और बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वो हम उसके धोखे में आ जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल ये मसले हैं, तो इस वजह से हमारा फोकस इन चीज़ों पर होता है। तो ये बहुत दो बुनियादी बातें थी, एक तो ये कि मसाइल की फिकी मसाइल की अहमियत हरगिज़ कम नहीं हो गई है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पूछने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने यानी बना लेना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो कम अज़ कम अपने आप को किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर लें कि क्यों नहीं बनाया मैंने अभी तक, ठीक है। और इस बात से कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि हम चाह रहे हैं कि आप आकर के ना वो हमसे बैत हो जाएं और हम फिर आप जो है वो यानी घुटना टेक करके हमारे सामने बैठ जाएं, फिर हम आपके ऊपर कोई तवज्जो वज्जो डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इससे आप बाहर निकल आए अगर आपके जहन में ये बातें थी तो, ठीक है। अगली हदीस पढ़ते हैं कि मुसलमान के साथ बशाशत के साथ मिलना भी नेकी है। जी है नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं बल्कि आमाल को देखता है। तो हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि बिला शक बिला शुबा अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है, ठीक है। तो बेशक अल्लाह इन्ना मुशब्बा बिलफेल जिसका तर्जुमा बेशक होता है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, और ला यंजुरु वो नहीं देखता, नज़रा यंजुरु का मतलब होता है देखना, तो ला यंजुरु वो नहीं देखता, इला हरफ जर है जिसका तर्जुमा की तरफ से यहाँ पर करेंगे, टूवर्ड्स सुअरिकुम, सुअर कहते हैं यानी ये सीन वाला सुअर नहीं है बल्कि सौद वाला सुअर, तो सुअर जो है वो शक्ल को कहते हैं, तो सुअरिकुम तुम्हारी शक्लें, व अमवालिकुम माल की जमा अमवाल होती है, तो वलाकिन वाव का तर्जुमा और लाकिन का तर्जुमा लेकिन, उर्दू में ये उर्दू का लेकिन भी वहीं से आया लाकिन से, यंजुरु वो देखता है, इला टूवर्ड्स कुलूबिकुम तुम्हारे कुलूब कल्ब की जमा कुलूब, और आमालिकुम तुम्हारे आमाल, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला के कौल फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन, के इनके कुलूब में مرض ہے، بیمار ہیں ان کے قلوب، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ قلب کے امراض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مرض کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار مینشن کیا ہے، تاکہ اگر ہم قرآن پر غور کرنا شروع ہو جائیں تو ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی قلب بیمار بھی ہو جاتا ہے، صرف جسم بیمار نہیں ہوتا بلکہ قلب بھی بیمار ہوتا ہے. اور جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں نا اس کے بارے میں، اللہ سے دعا تو خالی نہیں مانگتے نا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جب قلب بیمار ہو جائے نا تو ہم اس کے لیے بھی کچھ کریں، ٹھیک ہے نا. پہلے دعا ضرور مانگیں لیکن دعا کے بعد دوا بھی کریں، جیسا کہ جسم کی بیماری کے اوپر دوا کرتے ہیں. تشریح: اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ باطنی طور طریقوں کو دیکھتا ہے، اس میں اخلاص اور للہیت کتنی ہے. اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اچھے اعمال کی روح اور جان یہی اخلاص ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل و صورت اور اس کی دولت مندی پر نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت کے صحیح رخ اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر ہے. حدیث بالا جمع الفوائد میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اجسادکم کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو. اجساد جسم کی جمع، جسد کی جمع ہے اجساد، اجساد. ولا الى صورکم اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. واعمالکم یعنی تمہارے اعمال کی طرف بھی نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے قلوب کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اعمال سے کیا مراد ہے؟ ظاہری اعمال، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ، یہ لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ مطلب بیان کرنے میں زیادہ واضح ہیں کہ مقبولیت کا اصل دار و مدار نیت کی درستی پر مبنی ہے. اگر ظاہری اعمال تو بہت اچھے ہوں مگر اخلاص کی دولت سے خالی ہوں تو وہ اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہوتے. اسی وجہ سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے نفس، اخلاص پیدا کر، اسی سے خلاصی ممکن ہوگی، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اکثر ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر اخلاص نہ ہوا تو بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. جیسے کہ جہنم میں ڈالے جانے والے سب سے پہلے تین اشخاص کون ہیں؟ پہلا عالم ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ شہید ہے، اور تیسرا وہ امیر ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا. لیکن تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا صرف ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو نیت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ بڑی یعنی خطرناک چیز تو خیر نہیں، لیکن نیت جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ قلب کا فعل ہے، قلب میں ہوتی ہے، اور قلب کی نیچر ہی کیا ہے؟ پلٹتے پلٹتے رہنا، ٹھیک ہے نا. یقلب کیف یشاء، ٹھیک ہے، کہ قلب یقلب تقلیبا، یہ وہ چیز ہے جو کہ پلٹتی پلٹتی رہتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی نیت جو ہے وہ کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہوتی ہے، کبھی غلط ہو جاتی ہے. تو اب اس کو روکنا، یعنی ایسی الٹتی پلٹتی چیز کو ثبت کرنا، ثبت کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹ کر لینا ایک نیت کے اوپر، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہی سارا کا سارا اصلاح کا پروسیس ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب کو جو ہے وہ ثبت بنا دے، ٹھیک ہے، ایک ہی نیت کے اوپر فکس کر دے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے. اسی کو استقامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو استقامت کرنے کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، رائٹ، کہ بھائی کیا ہے، ظاہری سنتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ٹھیک ہے. ظاہری سنتوں کی کیا وجہ ہے؟ داڑھی واڑی رکھنا اور ایسے کپڑے پہننا، اور رائٹ، یہ کیا کیا ہے؟ یہ تو سارا سارا قلوب کا معاملہ ہے. ہمارے قلب کے اندر جو ہے وہ اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کا بھی معاملہ ہے تو وہ اس کی قلب کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے، تو اوپر سے وہ کیسے بھی کپڑے پہن رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. مائیکل جیکسن جیسے بال بنائے یا الٹے سیدھے جو ہے وہ اپنے یعنی ہیئر کٹنگ، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ یہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، ہیئر اسٹائل عجیب و غریب قسم کے، ٹھیک ہے نا. پھر کپڑے بھی جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے. تو یہ تو مردوں والی بات ہو گئی. پھر عورتوں کے اندر تو اور بھی زیادہ ماشاء اللہ کہ جی پردہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہی خالی نگاہوں کا پردہ ہے، وہ تو سوچ کا پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حجاب، یہ برقع، یہ ساری چیزیں تو مولویوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. तो फिर हदीस तो यही कह रही है कि हाँ सब कुछ जो है वो दिल में होता है, तो पर्दा शर्दी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो जाहिर को देखता ही नहीं है, तो पर्दा तो जाहिर पे किया जाता है, अमाल भी जाहिर पे किए जाते हैं, तो फिर क्या भाई। तो इसका फिर अगर कोई इल्मी जवाब दिया जाए, ठीक है, कि ये जो कल्ब की वो अल्लाह ताला देखते हैं, तो आप जो है वो ऊपर से जो भी करें तो क्या ये चल जाएगा अल्लाह ताला के सामने, क्योंकि कल्ब जो है वो आपका अच्छा है, आप अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं आप जो है। तो इसका कोई कोई जवाब दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो के जाहिरी चीजों को बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंस देते हैं, जाहिरी अमाल, जाहिरी लिबास, जाहिरी पर्दा, इन सब चीजों को अनइम्पोर्टेंट करार देते हैं और कहते हैं कि हमारा कल्ब तो अल्लाह ताला को राजी करने वाला कल्ब है। तो इसका जो है ना वो एक इस तरीके से बात समझाई जा सकती है कि ये जो जाहिरी अमाल हैं, तो ये तो बेशक बात ठीक है कि अगर जाहिरी अमाल बहुत अच्छे हों लेकिन कल्ब की नीयत जो है वो बुरी हो, तो उन जाहिरी अमाल की वजह से इंसान की बख्शिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी हुआ ना, जो कि मौलवियों पर फिट होता है। ठीक है ना, कि मौलवी आजकल किसको मौलवी कहते हैं, जो कि जाहिरी तौर पर पर्दा भी करता भी है, करवाता भी है, और मस्जिद के भी बाकायदगी से जाता है, और दाढ़ी भी रखता है, और यानी कुत्ता पजामा भी पहनता है, टोपी भी पहनता है। ठीक है, तो ये जाहिरी सुन्नतें, ये जो जाहिरी सुन्नतें हैं, ये आज के दौर में सिर्फ मौलवी कहलाने वाले लोग इन जाहिरी सुन्नतों को फॉलो या जो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मौलवी बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई उनके खिलाफ बात ना, यानी उनको ठीक करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड भी तो है ना इसकी स्टोरी की, दूसरी साइड भी तो है कि जी आप जाहिरी तौर पर किसी भी सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, ठीक है ना, बस बातिन में आप जो है वो बड़े अच्छे, यानी बड़े अच्छे आपके ख्यालात हैं, जो कि आपके नजरियात हैं, बड़े लॉफ्टी किस्म के आपके नजरियात हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए, इनकी इसलाह के लिए भी तो कोई बात होनी चाहिए ना। मौलवी की इसलाह के लिए तो बात हमने कर ली, और 100% वो दुरुस्त बात है कि मौलवी साहब जो है जहन्नुम में चले जाएंगे अगर उनके दिल के नीयतें ठीक ना हुई तो। ठीक है ना, लेकिन दूसरी साइड पर क्या कहेंगे, तो क्या कह रहे हैं आप कि जाहिर बातिन पर दलालत करता है। अच्छा, जाहिर बातिन पर दलालत करता है, तो मौलवी साहब जो है वो जहन्नुम में क्यों चले जाएंगे, अगर उनका जाहिर बातिन पर दलालत करता तो फिर वो जहन्नुम में कैसे चले जाएंगे, जहन्नुम में तो वो जाएंगे, ये तो बात पक्की है। ठीक है, अगर बातिन उनका गलत हुआ तो उनका जाहिर जो है ना वो कोई बातिन पर दलालत शरारत नहीं करेगा। जाहिरी अमाल इज लाइक कॉपीइंग, यू कैन पास एग्जाम बाय कॉपीइंग आल्सो। जाहिरी अमाल कॉपीइंग है, अच्छा, तो कॉपीइंग जो है वो यानी ये भी कोई कॉपी करना जो है ये भी कोई जन्नत की दलील तो नहीं है। तो भी आपने यानी इंसान को अल्लाह ताला ने गिरगिट से तो अफजल बनाया ना, तो गिरगिट जो है वो कॉपी कर लेता है, बल्कि गिरगिट क्या और भी बहुत सारे कीड़े हैं जो कि जहां भी बैठते हैं वो उस जगह जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या इंसान भी बस ये करके अल्लाह की रजा पा जाएगा, गिरगिट वाला काम करके इंसान भी जो है वो कामयाब हो जाएगा। इंसान में और इन कीड़ों में कोई फर्क नहीं है क्या? ये जाहिरी सुन्नतों को मुसलमान लोग, एक्सट्रीमिस्ट भी, मुसलमान लोग एक्सट्रीमिस्ट भी कर रहे हैं। दे से वाई टू लुक सो एक्सट्रीम मुस्लिम रादर बी ए मॉडरेट वन। हाँ जी, वो मॉडरेट और एक्सट्रीम ये तो हमारे अपने डेफिनेशन है ना, वो अगर उनकी तरफ जाके पूछे ना कि जी आपका क्या ख्याल है, तो आप जिस चीज को समझ रहे होंगे ना कि आप मॉडरेट हैं, तो वो आपका मॉडरेट होना भी उनके लिए एक्सट्रीम ही है। ठीक है, यानी आपके जो मॉडरेशन जिसको आप समझ रहे हैं, ये मॉडरेशन उनके नजदीक मॉडरेशन नहीं है। आप समझते हैं कि जी बुर्का उतार देंगे, खाली हिजाब पहन लेंगे तो उनके सामने मॉडरेट मुस्लिम बन जाएंगे। वो पता है क्या करते हैं, फिर वो एक फायरिंग करवाते हैं जिसके अंदर के ना हिजाबी से फायरिंग करवाते हैं। ठीक है ना, ताकि वो बात को प्रूव कर सकें कि ये खाली बुरके वाली एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये जो खाली हिजाब वाली है ना ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है ना, वो किसी ऐसे से बम फड़वाते हैं कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती, तो आप जो है वो खामखा खुश हो रहे हैं कि जी दाढ़ी कटवा देंगे तो हम जो है वो उनमें ना एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो जब इस तरह का बम फड़वाते हैं, फुटवाते हैं बम को, तो फिर वो कहते हैं कि जी देखो दाढ़ी वाले खाली नहीं है, बल्कि ये बगैर दाढ़ी वाले भी ऐसे ही होता है। लेकिन समझ में नहीं आती हमारी ये बातें। बहरहाल, तो ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तो हमारे अपने यानी ख्याली पुलाव हैं, हमारे अपने बनाए हुए, इत्तेबाए सुन्नत, सूरत, सीरत और सरीरत, तीन चीज़ों में है। शरीयत, अच्छा, सुन्नत पर अमल करना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, नस्बत, ज़ाहरी तरीका सुन्नत है जो नबी की अतात एंड इत्तेबा है। अब जरा बात बनी है, ठीक है, ये जो है ना अतात एंड इत्तेबा, ठीक है, देखें ये जो सो कॉल्ड मॉडर्निस्ट होते हैं ना, या जो कि अपने आप को मॉडरेट मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, तो ये इस बात पर तो कहते हैं कि जी जाहिरी चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि दिल की नीयत होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो अब हम इनको ये बात समझा सकते हैं या कह सकते हैं अपने तौर पर, बाकी समझ में उनके तो अल्लाह ही उनको समझाता है। तो वो ये कि भाई ये जो आपने दिल की नीयत की अच्छाई की बात करी है ना, तो दिल की नीयत की अच्छाई में एक ये भी तो आ जाता है ना कि जी आप अपने आप को दूसरों से अफजल ना समझें, आप अपने आप को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा इंटेलिजेंट ना समझें, ठीक है ना। तो ये जो तकब्बुर और जो वैनिटी होती है, सेल्फ वैनिटी, अपने आप को ज्यादा यानी यानी अकलमंद समझना, अपने आप को ज्यादा नेक समझना, तो ये भी तो अच्छी बातें नहीं है ना। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की ये जाहिरी सुन्नतें हैं, तो बेशक बातनी सुन्नतें जो हैं वो ज्यादा अफजल तो हैं, लेकिन जाहिरी सुन्नत जो है ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम का ही एक अमल है ना, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया, आप मानते हैं इस बात को, इस बात से तो वो इनकार नहीं करते ना कि नबी अलैहिस्सलाम ऐसा लिबास पहनते थे, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ऐसी ऐसा इमामा पहनते थे, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ऐसे यानी ये जो जाहिरी सुन्नतें उनके ऊपर अमल करते थे, इससे तो वो इनकार नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि कल्ब का मामला जो है वो ज्यादा अफजल है, और ये चीजें जो है वो यानी बेकार हैं, ठीक है, बेकार हैं ये चीजें, इस तरह की बात करते हैं ना। तो भाई ये जो आप उसको बेकार कह रहे हैं, तो ये तो ऐसे है ना कि जी मैंने बात को ज्यादा अच्छा समझा है, और जो उम्मत के अंदर लाखों लोग जो गुजरे हैं जो कि इन्हीं सुन्नतों को फॉलो करते थे, उन्होंने इस बात को नहीं समझा, बल्कि मैंने समझा इन बातों को ज्यादा ज्यादा बेहतर। तो ये तो तकब्बुर वाली बात हो गई ना, अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझना, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट और यानी ज्यादा परहेजगार और ज्यादा नेक समझना, ठीक है। हमें जो कुरान कहता है वो तो हमें अतात और इत्तेबा का हुक्म देता है, ठीक है, अतात करो कि जो तुम्हें बड़े कह रहे हो तुम उनकी बात को मानो, अतात, ठीक है, बार बार आपके सामने रिपीट करते हैं ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जो उलुल अम्र हमने बनाए हैं तुम उनकी इताअत करो, ठीक है, पत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, जो हमारी तरफ इनाबत करने वाले लोग हैं तो उनकी उनकी तुम इत्तबा करो, ठीक है। तो जो लोग दुनिया से कट करके अल्लाह ताला की तरफ लगे हुए लोग हैं, तो उनकी इत्तबा करना जो है वो हमारे अंदर की जो तकब्बुर और उजब है ना, इस तकब्बुर और उजब उजब का उसके अंदर इलाज है, ठीक है। और अगर हम अपने तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि नहीं यही जो है वो सही है और बाकी चीजें जो गैर अहम है, तो इसकी वजह से यानी ये ना एक सेल्फ प्राइड और सेल्फ यानी प्रोजेक्शन वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यानी अपने आप को मिटाना, अपने आप को कम करना लोगों के सामने, ये नहीं कि अपने आप को एक यूनिक बना करके जो है वो एक अजीब तरीके से कोई नई चीज इजाद कर लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, नौजवानों में बड़े मकबूल हो जाते हैं, ज़ाहिर अंग्रेजी बोलेंगे तो फिर नौजवान तो फिर हमारे अंग्रेजी को समझते हैं ना, तो अंग्रेजी बोलने की वजह से ज्यादा मकबूल हो जाते हैं, फिर अमरीका पहुंच जाए तो और भी ज्यादा मकबूल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वो माशाल्लाह एक जबरदस्त बात कर दी, जो कि बड़ी लोग भेजते भी हैं फिर एक दूसरे को, ये वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी ये लिबास की जो सुन्नत है ना, तो मेरा ख्याल ये है कि लिबास की जो सुन्नत है वो ये है कि आप जहां रहते हैं ना वहां के जैसे लोगों का लिबास पहने, ठीक है ना। और उसके ऊपर दलील क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर दलील ये दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैशन रेवोल्यूशन नहीं लाया, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नया फैशन इजाद नहीं किया, बल्कि जैसा कि उस जमाने का लिबास का फैशन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वही रखा, ठीक है ना, कोई नया फैशन इजाद नहीं किया। ये उनकी एक दलील है, ठीक है। दूसरी दलील उनकी ये है कि आप लिबास की सुन्नत पर क्यों एम्फेसिस देते हैं, अगर आपको सुन्नतों के ऊपर अमल करना है तो आप जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का खाना क्यों नहीं खाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह के घर में क्यों नहीं रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बाकी जो खाना और घर से ही उनका उन्होंने बेसिकली दलील दी थी, ठीक है, आप इस तरह की बाकी चीजें क्यों नहीं करते, आप सिर्फ लिबास की सुन्नत को क्यों अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो आपको तो चाहिए कि आप जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ जो रह रहे हैं ना, तो आप गैर मुस्लिमों के ही लिबास को पहने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि अपने जमाने के लोगों की सुन्नत के मुताबिक रहना, ठीक है। तो अब इसके ये जो उन्होंने बात करी है, एक आम आदमी जब इसको सुनता है ना तो वो इससे इमीडिएटली इम्प्रेस होता है, ठीक है, इमीडिएटली ये बात उसके दिल को जाकर के लगती है और वो कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई इल्म वाला इसको सुनेगा तो वो इसके अंदर कुछ और गहराई में जाएगा और समझ जाएगा कि ये बात सही क्यों नहीं है, ठीक है। क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ जाहिरी सुन्नत की बहुत अहमियत है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, जब फरिश्ते भी वही मूसा अलैहिस्सलाम का फरिश्ते भी वही लिबास पहना था। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खैर ये वाला फरिश्तों वाला वाकया है तो ये तो आप उनको क्या समझाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वो वाकया मेरे ख्याल में तो है कि फरिश्तों ने भी लिबास पहना था आप रज़ी अल्लाह अन्हु वाला। तो इसमें दो प्रॉब्लम, दो या दो तो खैर दो तो नहीं बल्कि बड़ी प्रॉब्लम है उनके इस दलील के ऊपर, कि एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैशन रेवोल्यूशन नहीं लाया था, ठीक है भाई, उस जमाने के लोगों का जो ड्रेस था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ड्रेस को कंटिन्यू तो किया, ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है ना कि जी वो जो ड्रेस था उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी तब्दीली तो करी थी, ठीक है ना। वो ये क्या थी कि ये लोग जो है वो इमामा पहनते थे बगैर टोपी के, ठीक है, इमामा उस कल्चर में राइज था पगड़ी पहनना, राइट, लेकिन वो बगैर सर कवर किए हुए पगड़ी पहनते थे, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तब्दील किया, ठीक है भाई, टोपी के साथ जो है पगड़ी पहनना, ठीक है ना, तो कुछ लिबास में तब्दीली तो लाए थे ना। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास होता था तो उसके भी फीचर्स थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यानी तहबंद को ज्यादा पसंद करते थे, शलवार को उसके बाद दूसरे नंबर पे पसंद करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफेद रंग को जो है पसंद करते थे। उस कल्चर के अंदर सफेद रंग वाला तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आया ना कि सारे लोग सफेद पहनते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद को जो है ज्यादा तरजीह दी, दूसरे रंग जो है वो बहुत कम पहने, ठीक है। तो लिबास के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अपनी यानी जिसको कहते हैं ना यूनिकनेस जो है वो पैदा करी। तो आपका ये कहना कि कोई भी यूनिकनेस पैदा नहीं करी, तो ये तो 100% बात सही नहीं होगी ना कि कोई भी यूनिकनेस पैदा नहीं करी, भाई पैदा करी यूनिकनेसेस भी लिबास के मामले के अंदर भी, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्चुअली दूसरी एक बात थी मेरे ध्यान से अभी निकल गई है, लेकिन एक और बात इसके अंदर ये है कि ये भी वही बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लिबास की सुन्नत है तो ये सुन्नत क्या है, ये 20वीं सदी हिजरी में या 21वीं सदी हिजरी में जाकर के आपको समझ में आई है, और वो भी अमेरिका में बैठ करके। ये जो इतने 20 यानी 1400 साल तक जो उलमा गुजरे हैं, मशायख गुजरे हैं, जिन्होंने के अपने लिबास को इसी तर्ज के ऊपर रखा जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, ठीक है, चाहे किस कल्चर में भी गए, पुराने जमाने में भी अगर गैर मुस्लिम मुल्क में गए तो उस वक्त भी जो है वो अरबों का लिबास अलग होता था। हत्ता के वो वक्त आ गया था कि जब अरबों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी, दुनियावी तौर पर हुकूमत दी, तो यूरोपियन अकवाम जो है वो अरबों का लिबास पहनना शुरू हो गए। तो अरब अगर जिस वक्त वो उनको ताकत नहीं मिली थी, अगर उस वक्त जो जो अरब थे वो मेजॉरिटी के मुताबिक अपने लिबास को कर लेते, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अरबों ने स्पेन को फतह किया, ठीक है, तो स्पेन को जब फतह किया तो एकदम से सारा स्पेन मुसलमान तो नहीं हो गया, बल्कि वो तो मुसलमान आखिर तक नहीं हुआ, ठीक है। अरब जो थे वो थोड़ी मिकदार में थे, बहुत थोड़ी तादाद में, उन्होंने जो है वो बहुत बड़े मुल्क को जिसकी आबादी जो थी वो उनसे कई गुना ज्यादा आबादी थी गैर मुस्लिमों की आबादी, ठीक है। तो उस आबादी के अंदर जो अरब गए तो उन्होंने اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کیا انہوں نے اپنا لباس میجورٹی کے لباس کے مطابق کر لیا؟ اگر وہ میجورٹی کے لباس کے مطابق اپنا لباس بھی کر لیتے تاکہ بھائی لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کامل یعنی کنٹرول دے دیا اسپین کا, تو ایسے کیسے ہوتا کہ باقی یورپ کے اندر بھی عربوں والا فیشن چلنا شروع ہو جاتا؟ اگر عرب اپنا لباس والا سسٹم چھوڑ دیتے تو عربوں والا لباس جو ہے وہ باقی یورپ میں کیسے چلنا شروع ہوتا؟ عربوں نے اپنے لباس کو مینٹین کر کے رکھا, چاہے وہ یورپ میں گئے چاہے وہ انڈیا کی طرف آئے, حتیٰ کہ ان کے انفلوئنس کس یعنی ایسا انفلوئنس پڑا لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کا یعنی اس جگہ کے لوگوں کا لباس چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. تو لباس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے مسلمانوں نے ہمیشہ. اور دوسری بات یہ کہ جب ایون مسلمان نیچے چلے گئے اور کافر اوپر آ گئے, تو ایون اس دور کے اندر بھی پچھلے کم از کم 100 سال سے تو یہ معاملہ ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم ملکوں میں جا کر کے بسنا شروع ہو گئے. تو اب غیر مسلم ملکوں کے اندر ہمارے اکابرین مشائخ جو ہے وہ ہمیشہ سے جا رہے ہیں, یعنی جب سے ایسا معاملہ ہوا ہے کہ مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جا کے بسنا شروع ہو گئے, تو ہمارے اکابرین ہمارے مشائخ جو ہے وہ ان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ اپنے دین کا کام کرتے ہیں. لیکن وہ لباس کون سا والا پہنتے رہے ہیں؟ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, یہ وہاں جا کر کے کیا سوٹ کوٹ پہننا شروع ہو جاتے ہیں؟ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دنیا کے ہر گوشے میں گئے ہیں, مستقل سفر میں رہتے ہیں, وہ کیا اپنا لباس چینج کر لیتے ہیں جب وہ وہاں جاتے ہیں, رائٹ؟ حتیٰ کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس وہاں پر بنتے ہیں جو کہ وہیں کی پیدائش ہوتے ہیں, اکثر ان میں سے وہیں کی پیدائش ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ 5-5 نسلوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں ان ملکوں کے اندر, نان مسلم ملکوں کے اندر, تو ایون وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جیسا لباس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اکابرین جیسا لباس وہ بنا لیتے ہیں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں, جب وہ توبہ کرتے ہیں اپنی پرانی زندگی سے, ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے وہ 21ویں صدی میں آ کر کے یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ نہیں جی, یہ سارے لوگ جو ہے نا, ان کو تو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آئی بات, انہوں نے تو آج تک لباس کی سنت کو سمجھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ لباس کی سنت کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی سوٹ کوٹ پہننا چاہیے امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی جیسا میں پہنا ہوں ویسا پہننا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو یہ بات ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ تکبری کی نشانی ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جی سب جو ہے وہ بیوقوف تھے, جتنے علماء اور مشائخ سارے کے سارے بیوقوف تھے اور آج تک ہیں وہ سارے کے سارے بیوقوف, ایک میں عقل مند آ گیا ہوں اس دنیا کے اندر آج, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے اندر فالٹس ہیں, مثال کے طور پر بھائی آپ لوگوں کو کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں نا اپنے ساتھ, تاکہ آپ دین کا زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکیں, تو یہ آپ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں, عورتوں کا کیا کریں گے بھائی, ان کے جیسا بننے میں ان کے یہاں آپ کو یہ فرق پتہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ تو پورا کپڑا پہنتا ہے, جب کوئی فارمل گیدرنگ میں آتا ہے مرد تو پورا کپڑا پہنتا ہے, تو چلیں آپ جو ہے وہ ان کے جیسے سوٹ کوٹ پہن لیں گے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے گھل مل جائیں گے. عورتیں کیا کریں گی بھائی, ان کی عورتیں تو فارمل ڈریسنگ ان کی ہوتی ہے چھوٹی, ٹھیک ہے نا, جتنی فارمل ہوگی اتنی چھوٹی ہوگی, تو اب آپ اپنی عورتوں کو بھی کہیں کہ جی ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کے لیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرینج فیل نہ کریں, اپنی عورتوں کو بھی چھوٹا کپڑا پہنانا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, پہلے تو برقع اترے گا, نقاب اترے گا, پھر اس کے بعد حجاب جو ہے, اب بالآخر جا کے حجاب بھی اتر جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ظاہری سنتوں کے حق میں جو ہے نا یہ ساری باتیں جاتی ہیں کہ ظاہری سنتوں کو کم حیثیت دینا یہ دراصل انسان کے اپنے دل کے برائی کی نشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ دل میں انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ عقل مند اور بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے, اور صرف دوسرے انسانوں عام انسانوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ علماء اور مشائخ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ رہا اور عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی دل کی ہی خرابی ہے, ظاہری سنتوں کو اگنور کرنا یہ صرف ظاہر کی خرابی نہیں ہے, یہ بھی دل کی خرابی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکچولی پوائنٹ تھا جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات یہ بھی سمجھا دیں کہ کیا ایک عالم سے ایک بات اور دوسرے سے دوسری اور شیخ صاحب سے تیسری بات پر عمل کرنا کیسا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی بات ہم سمجھ گئے ہیں, یہ 100% نفس پرستی ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. کسی سے کچھ پوچھا, اسے دوسرا مشورہ کیا, تیسرا مشورہ کیا, تو یہ بیسیکلی تو یعنی پھر فتویٰ کون دے گا کہ کس کے مشورہ پہ عمل کرنا چاہیے, یہ فتویٰ کون دے گا. تین رائے آپ نے اکٹھی کر لیں, ٹھیک ہے نا, اب تین میں سے ایک کو अमल तो एक ही पर हो सकता है ना, तीनों पर तो एक साथ अमल नहीं हो सकता ना, अमल तो एक ही पर होना है। तो ये फतवा कौन देता है, ये मुफ्ती साहब कौन होते हैं, ये मुफ्ती साहब जो होता है ना ये नफ साहब होता है, ये फतवा देते हैं। और मुफ्ती साहब को जो है वो आपको पता है कि कौन जो है वो फीडबैक दे रहा होता है पीछे से, वो शैतान साहब होते हैं। बेसिकली ये नफ्स शैतान वाला मामला होता है कि कई राय ले लेना और उसके बाद फिर करना वही जो कि मेरा दिल चाह रहा है करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को रोकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।